ओम शांति शांति शांति। उपस्थित प्रिय आत्मा, इंद्रवदन ने कहा है कि स्वामी जी, वाद विवाद क्यों होता है, कैसे होता है, हम समझदार हैं फिर भी क्यों होता है, तो वाद विवाद पे लेते हैं। उपनिषदों में ऋषियों ने एक माया की बात लाए हैं। संस्कृत का विद्वान जानता है, जो संस्कृत पढ़े हैं वो जानते हैं, माँ का अर्थ नहीं होता, या मतलब जो अर्थ है भी नहीं, फिर भी आप स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वाद विवाद है ही नहीं। अब ये जा थोड़ा गहराई से जाना पड़ेगा तो माया की बात समझ में आ जाए। वाद विवाद कारण सत्य नहीं है, वाद विवाद कारण माया है। माया दिखाई पड़ रही है और है नहीं, और उसे हम अपना बनाना चाहते हैं। आपके सामने कई बार हमने कहा और हमारे ऋषि मुनियों ने भी कह दिया, भजन में कई बार आप सुने होंगे, माया मरे न मन मरे, मर मर जाए सके, कितनी लंबी उम्र हो जाए, हम कितने विद्वान हो जाएं, कितना बड़ा पद मिल जाए, नाम हो जाए, लेकिन जो माया के स्वरूप को समझ रहे तो कोई तकलीफ नहीं। अगर जगत को आप माया जाल बताते हैं तो इस जगत के माया जाल में तो राम भी है, रावण भी है, कृष्ण है, कंस भी है। आप एक जेल की व्यवस्था को देखें तो जेल में अपराधी भी है, जेलर भी है, सुपरिंटेंडेंट भी है। माया ये कहती है केवल सत्य से इस जगत का व्यवहार नहीं चल सकता, वाद विवाद सत्य का नहीं है, समाधि का नहीं है, वास्तविकता का नहीं है। हम वास्तविकता में कुछ और देख रहे हैं, माया की जो बात आती है नहीं, है सत्य, उसमें कुछ और देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे सब अच्छे पढ़े हैं, हमारे यहाँ बिंब और प्रतिबिंब की जो बात की गई है, वास्तविकता और वास्तविकता की जो बात की गई, रियलिटी और इल्यूजन की जो बात की गई, इस पर थोड़ा सा विचार करें। माया क्या कुछ में कुछ और देखना। तो जिन लोगों ने वेदांत का अध्ययन किया होगा और थोड़ा भी अध्ययन किया होगा, चाहे विचार सागर है, विचार चंद्रोदय, बहुत सरल ग्रंथ है विचार सागर, उसमें मंत्र नहीं है, आपकी भाषा में वेदांत की बात को समझाया गया। तो जिन लोगों ने विचार सागर का भी अपनी भाषा में पठन किया है या सुना, मैं भ्रमण काल में देखा बड़े बड़े सिद्ध संत भी मिले, अपनी भाषा बोलते थे, लोग सुन करके उनके नाम से किताब लिखते थे, लेकिन वो स्वयं नहीं लिख पाते थे, पढ़ भी नहीं पाते, फिर अनुभव की वाणी बोलते थे बालक की तरह। तो विचार सागर में कहें तो वहां ये माया की एक बड़ी सुंदर बात आई है। आपने सांप देखा है, रात अंधेरी है और एक रस्सी का टुकड़ा सांप की तरह टेढ़ा करके रख दिया गया है, आपने सांप देखा है, एक रस्सी का टुकड़ा रात में धुंधला सा दिखाई पड़ता है, रस्सी को देखते ही आपके मन में सर्प का सांप का विचार होता है, कुछ है और उसमें कुछ और आप देख रहे हैं, और फिर विचार सागर के ऋषि ने कहा अगर सचमुच सांप है तो आपकी आवाज से भाग जाएगा, लेकिन जो ही प्रकाश हुआ सांप था नहीं, रस्सी में सांप देख रहे थे, वास्तविकता का ज्ञान होते ही जो हमारी कल्पना में अवास्तविक था वो निकल गया, निकालना नहीं पड़ा, अपने आप निकल गया। सत्य का ज्ञान होते ही जो हम देख रहे थे अपने आप निकल गया, पता चलना चाहिए कि रस्सी है, रस्सी का ज्ञान होते ही सांप अपने आप भाग गया, लेकिन कुछ में कुछ देख रहे हैं। माया का प्रसंग है, ये जगत माया के बिना नहीं बढ़ सकता, चल सकता, रह भी नहीं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कह दिया जिस पर कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा मम माया दुरतेया, हे अर्जुन तू मुझे समझ सकता है लेकिन मेरी माया को नहीं। यहां कृष्ण की बात नहीं है, मेरी की बात है, अस्तित्व की, परमात्मा के केवल कृष्ण की बात नहीं है, ये तो प्रतीक है। कृष्ण जब मैं बोलते हैं तो वो संबंध आत्मा और परमात्मा से है, शरीर से नहीं है। आत्मा ने एक आकार लिया, उस आकार का नाम समय पर कृष्ण बना, राम बना, आप बने, मैं बना, लेकिन एक अस्तित्व है जिसकी पहचान के लिए हमने नाम दिया। इसलिए हमारे यहाँ के नाम रूप आकार ये मिथ्या है। एक काल में दिखाई पड़ना और एक काल में अभाव हो जाना, थोड़ा भी आप वेदांत का अध्ययन किए हैं, वास्तविकता और सत्य को त्रिकाल अभाजिता कहा गया, था है और रहेगा। लेकिन आज जो है कल नहीं है, जो कल था वो आज नहीं है। एक समय में अभाव हो जाए तो उसे मिथ्या कहा गया, उसका अस्तित्व किसी और से है, दिखाई पड़ रहा है लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, और उसे आप अपना बनाना चाहते हैं। आप हैं वास्तविक और अवास्तविक को पकड़ना चाहते हैं। विचार सागर में ही कहानी में बताया गया है, सुबह आप अपनी छाया देखते हैं, छाया को पकड़ने कोशिश कीजिएगा, छाया दिखाई पड़ती है फिर भी सत्य नहीं है, क्योंकि उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सुबह छाया कितनी लंबी हो गई और दोपहर में छोटी हो गई, लेकिन आप तो वही हैं, 7 फुट 6.5 फुट। आपकी जो ऊंचाई है उसे वास्तविकता का रूप दीजिए, और छाया जो है वो अवास्तविक है। अवास्तविक क्या है लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है। सुबह देखिए आपकी छाया कितनी लंबी है, आप जब मुख्यमंत्री रहते हैं, करोड़पति रहते हैं, तो कितनी लंबी छाया है, लेकिन आप वही को वही हैं, नहीं रहते तो कोई पूछता नहीं। वाद और विवाद का कारण सत्य नहीं है, नाम रूप आकार है। बचपन में जिसने 6ठी क्लास में टुडे एंड टुमारो पढ़ा होगा, हमने पढ़ा 6ठी क्लास में टुडे एंड टुमारो एक पुस्तक, उसमें कहानी आती है और कहानी का स्वरूप यही है। बड़े अच्छे ढंग से वो कॉन्टूडियन तुम्हारों में वो कहानी बताई गई, जो लोग पढ़े होंगे इस कहानी को समझते होंगे। हम तीन हैं, तीन भाषा जानने वाले, तीन भाषा वाले को एक रुपया दिया गया। मैं हूं, आप है, मतलब हम तीन हैं, भाषा सबकी अलग है, उनको हम तीनों को एक रुपया दिया गया और कहा बाजार से मनपसंद चीज खरीद लीजिए। एक काल्पनिक कहानी है लेकिन वास्तविकता अवास्तविकता क्या है, नाम रूप पर हम लड़ते हैं, वाद विवाद करते हैं, वास्तविकता पे नहीं। तो एक कहता है कि मैं तरबूज खरीदूंगा, एक कहता है मैं वाटरमेलन खरीदूंगा, एक और कुछ नाम फारसी में है दिया गया है, मैं भूल गया उस समय। तीनों लड़ने लगे, एक समझदार व्यक्ति आया, भाई आप लोग क्यों लड़ रहे हो? कहा हम तीनों को एक रुपया मिला है। ये भाई कहते हैं तरबूज खरीदना है, एक कहता है वाटरमेलन, एक और कोई फालतू वगैरह जानता तो बता दे, एक नाम और फालतू। ऐ तो एक कहानी है फालतू। तो अभी दो ही जो मैं जानता हूँ, आई एम द थाइटी, आई शुड नॉट स्पीक दिस वे, थाइटी हूँ इसलिए जो नहीं जानता क्षमा मांगूंगा, भूल गया। भूल के क्षमा मांगना बड़ी भूल नहीं है, लेकिन जानबूझ के मिसगाइड करना बड़ी भूल है। तो अभी दो नाम ले लीजिए। मैं चाहता हूं कि मुझे वाटरमेलन चाहिए, आपका जो तरबूज चाहिए, हम दोनों लड़ रहे हैं। फिर समझदार व्यक्ति आया, भाई आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? कहानी में तीन है, अब नहीं नाम मुझे याद आ रहा, इसलिए दो कर रहा हूं, बात को समझिए।
कलिंगर
क्या बोल रहे?
कलिंगर
अच्छा,
कलिंगर
अच्छा, धन्यवाद आपको।
नहीं याद
तो हम तीनों लड़ने लगे। समझदार व्यक्ति आया, भाई क्यों लड़ रहे हो? जी हमें ये चाहिए, हमें चाहिए। अरे कहा क्या नाम रूप में लड़, मैं अभी आता हूँ खरीद के लाए। हाँ तुम यही चाहते थे? हाँ तुम यही चाहते थे? हाँ तुम यही चाहते थे? हाँ तो हमारे ऋषियों ने कहा आपका नाम राम है कि कृष्ण है कि शिव है कि कुछ भी है, ये सब अवास्तविक है, लेकिन उस वास्तविक का जो सत्य है उसका परिचय प्राप्त करने के लिए ये नाम एक कल्पना से दिया गया, लेकिन कल्पना का आधार भी सत्य है। क्योंकि विज्ञान भी कहता है राम नाम दिया गया, कृष्ण नाम दिया गया, लेकिन राम की भी महिमा, राम करते करते आपकी शक्ति का, वास्तविकता का, आत्मा का जागरण हो जाएगा और उसका सदुपयोग होगा। रावण कहने से विचार अच्छे नहीं होंगे। एक बात है, अभी ओबरा वगैरह हो तो सुने, थोड़ा बहुत मुझे मिलिट्री के ज्ञान है, आप सबसे ज्ञान है, देखिए आप लोगों में कितनी ताकत है, लेकिन उसका गलत उपयोग हो रहा है। आज बैठे बैठे कहीं हम मिसाइल से मार कर सकते हैं, किसी को उड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए हमारी मिलिट्री के पास, किसी भी मिलिट्री के पास ऐसा नहीं, कुछ ऐसी भी व्यवस्था है कि 2 किलोमीटर तक उस व्यवस्था का उपयोग करने के बाद, रखने के बाद वहाँ हर चीज सस्पेंड हो जाती, ना आपका टेलीफोन चलेगा ना आपका मोबाइल चलेगा, कितनी जबरदस्त ताकत। हालांकि मिलिट्री वाले इसका उपयोग करते हैं, आई नो दैट, आप भी जानते होंगे, कुछ लोग भी जानते होंगे, जो लोग थोड़ी विज्ञान में रुचि रखते वो भी जानते हो। तो आपके पास कितना माइंड है, लेकिन माइंड का जो उपयोग है या दुरुपयोग है, सवाल उसका उठता है। चले अभी जो करंट टॉपिक ले लो, बीस बाईस साल पहले गीत सुना करता था, या पच्चीस साल पहले, तीस साल पहले, कि भगवान ने तो हमें एक धरती दी थी और हम लोगों ने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। एक बहुत अच्छा गीत कवि थे, तो न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। देखा जाए कितनी वास्तविकता है। ये जमीन है आपकी, कब तक रहेगी? इसी बात को ऋषि मुनियों ने कहा, इस चीज को समझना है। मकान बनाना सब वो मैं बताऊंगा, नदी में तैरना है तो पानी चाहिए, माया चाहिए, लेकिन नदी में डूबना नहीं है, माया का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं माया नहीं चाहिए, लेकिन उसको समझ। और जब समझ लेंगे तो कोई दुख नहीं है। एक कहानी आती है, गुरु जी ने अपने शिष्य के यहाँ आते हैं, खुशी की बात है। शिष्य कहता देखे तो बगीचा है, मकान है, ये है, एक समझाने की बात। कहते बगीचा बेटे किसने बनाया? कहा मेरे दादा ने बनाया। कहा दादा कहाँ है? कहे ऊपर गए। फिर इस बगीचे का मालिक कौन हुआ? कहा मेरे पिताजी। कहा वो कहा ऊपर गए, तो तू भी मालिक कब तक रहेगा? कहा तो एक समझाने का है, बगीचा तेरा, लेकिन तू कहता मेरे दादा ने बनाया। दादा गए तो पिता मालिक बने, पिता गए तो
तू मालिक,
अगर तू जाएगा तो कौन मालिक रहेगा? ये समझने की बात। हम जब तक हैं तभी तक जमीन के मालिक हैं, मकान के मालिक हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि जब आप निमित्त बन जाते हैं, मालिक नहीं निमित्त, मेरे पहले भी हुआ है अच्छा काम, आज भी हो रहा, होता रहेगा, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे मैं अच्छा काम करूं। एक सवाल ये उठता है, ये माया के प्रसंग, आप कितना अच्छा काम करें लेकिन सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। कभी कभी आपसे इशारा करता हूं मैं, पहले आपके एक व्यवहारिक बात, वाद विवाद की व्यवहारिक बात करें, माया के कारण बात थोड़ी पुरानी है। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे पास आया, कमाता भी अच्छा था। स्वामी जी आजकल पिताजी शराब बहुत पीते, एक गुजरात के बाहर की बात। स्वामी जी पिताजी शराब बहुत पीते, तो घर का सभी लोग मेरे में श्रद्धा रखते थे। समय देखकर पिताजी से बात की, पिताजी ने कहा कि स्वामी जी थोड़े दिन पहले ज्योतिषी आया था। मैंने कहा ज्योतिषी, अभी मैं धरती पर कितने साल रहूंगा? उसने बताया। स्वामी जी गुरु महाराज से झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो माया का, माया कितनी विचित्र है। देखिए हमारे आपके जीवन, गुरु महाराज जी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बड़ी अच्छी बात है। हमने इतना बनाया, जमीन बनाया, मकान बनाया, अब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और जिंदा रहूंगा तो खूब अच्छी तरह खा पी लूं ना, इसलिए करता है। बाकी थोड़े कि बच्चों को भिखारी बनाना चाहता हूं। अभी माया नहीं तो और क्या है? किसी ने कह दिया कि आप 6 महीने जिंदा रहेंगे तो जो आपने बनाया उसको ही खत्म करने पर आप उतारो बच्चों के। मैंने कहा बुलाओ दोस्ती को, क्या नहीं बताइए। मैंने कहा जो से कहो तो मनीष साहब कहते हैं कि अभी तो आप कम से कम 6 साल जिंदा रहेंगे, 6 महीने नहीं। तो जाके जोशी से पूछे मनीष साहब कहते हैं, तो कहते भाई साधु बोले तो वही ठीक होता है। तो जोशी को ही गाली देने लगे, कैसी माया, तो ऐसे 6 महीने के हिसाब से खाता था, ऐसा खाऊंगा तो 6 साल में तो मैं भी भिखारी बन जाऊंगा। तो जोशी को भी गाली देने लगा, ये भी माया। क्या माया, तूने तो मेरा घर तू जाग जा। 6 महीने जिंदा रहो, मैं कहता हूँ जिंदगी भर 150 बरस रहो। लेकिन ये माया का जो रंग है ना, माया का रंग बताऊं, आपकी तरह मैं भी अच्छे घर का था, छोट बुट टाई भी लगाता था, 5 स्टार होटल में भी जाता था, बहुत पुराने बात है, उस समय बहुत कम थे होटल, आजकल तो सभी जगह हो। तो जब होटल में जाए ना तो मैं भी अपनी माया बताऊं, बहुत उस समय तो खैर ठीक है 100 रुपये बहुत, आजकल तो शायद 1000-2000 हो जाए, 100 रुपये मारता भाई कितना खिलाओ जितना खाओगे, तो हम 4-5 कहते भाई इतना खाओ इतना खाओ। अरे खाने के बाद तो कई बार मन भी घबरा जाता था, लेकिन माया देखो 100 रुपया देना है तो खूब खाओ, माया नहीं तो बोलते। एक और माया बताऊं, बताऊं आप सुनकर के ताजु करेंगे। माया कहती, मैं आपकी थाली में लड्डू दिया, मेरे मन में माया है कि खा जाइए, मैं तो प्रेम से खिला रहा हूँ, ये भी माया है। आपकी इच्छा खाने की नहीं है, लेकिन मेरी माया देखो, अगर खा करके भले आपको तकलीफ हो जाए चलेगा, लेकिन छोड़ोगे तो मेरी माया मुझे तकलीफ देती है कि मैंने इतना बढ़िया लाडू दिया और खाया नहीं, माया से ही तो एक बार है। माया के स्वरूप, मैं अपनी लड़की की शादी पर, मैं का मतलब उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अपनी लड़की की शादी पर 50 लाख रुपया खर्च किया, बड़े प्यार से करता हूँ, आनंद है, लेकिन बाजपड़िया वाले को 100 रुपया ज्यादा देने में मैं गालियां देता हूँ, कैसी माया। देखा है कि 50 लाख दे रहे हैं बाजपड़िया वाले को, अरे बचिया ये था वो था, कैसी माया। और एक माया की बात बताऊं, महाराज जी एक आंख वाली भी चलेगी, विधवा भी चलेगी। और माया का रंग है, जब अच्छी लड़की दिलाया तो कहते कहाँ मेरा भाग टूटा था, तू आ गई। मैंने कहा हे भगवान, अब किसका भाग टूटा था, पहले मुझे कहा जाता था महाराज लड़का 34 साल का हो गया, बाल विधवा भी हो गई, आपके बहुत परिवार है, गरीब भी चले। तो एक बात बता दो, कैसी माया, माया हाला उससे फायदा कुछ नहीं। अच्छा एक चीज आप बताइए, बड़े प्यार से कहूं क्योंकि मैं सब जानता हूं, पिता कहता है कि स्वामी जी लड़के को, मुझे कहा था कि लड़के को कहिए कि संभाल खर्च करें। अब माया बताता हूं, लड़के से पूछता हूं, कहा महाराज ज्यादा नहीं खर्च करता। जब भी पिताजी से पूछता हूँ तो पिताजी कहते हैं कि तेरे लिए कमाया तेरे लिए अब ये तो खर्च करने वाले नहीं, तो जब मैं 80 साल को हो जाऊंगा तब मेरे हाथ में चाबी आएगी, तो क्या खर्च करूंगा, अभी इसे खर्च कर रहा है। अब यही माया, तो वाद विवाद का कारण जो है वास्तविकता को नहीं समझ रहे, उसमें कुछ और देख रहे हैं। और फिर आज जो वास्तविक है सुख उसमें है, जो अवास्तविक उसमें सुख नहीं है। अभी ओबराय होटल की बात आई, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कह रहा, कौन कहता है कि हमारा देश गरीब है, मैं तो नहीं मानता। जब आप ओबराय होटल में गए, भरा हुआ है, ताजमहल में गए, कितना वहां खर्च होता है जो सुना है, तो देश कहां गरीब, देश कैसे गरीब, मैं नहीं मानता। लेकिन एक व्यवस्था है कि होटल में चलेंगे, अच्छी डिश आएगी, खाएंगे पिएंगे, बात यही होती है। ये जो आप लोग बाजार से लाते हो ना चीजें, वही होती है, कोई आसमान से, उसकी एक व्यवस्था है, एक स्वाद है। और यहाँ कोई होटल वाला हो तो क्षमा कीजिएगा, दो चार होटल के मालिक मुझे जानते हैं, मैं गया भी हूँ, लेकिन होटल का मालिक होटल में नहीं खाता, आप लोग क्यों खाते हैं? अब कोई और बात मैं कहना नहीं चाहता, नहीं जा, होटल मालिक कभी नहीं खाता। अच्छा आप गए, लेकिन देखिए व्यवस्था क्या हो गई। एक बात, आप सुख के लिए गए थे, ऐसा नहीं, तो सुख कहाँ? ये मृत कृष्णा की तरह, इसको मिरज बोलते हैं। आप जाइए रेगिस्तान में, जो लोग गए हैं बिल्कुल वैज्ञानिक बात, बगीचा दिखाई पड़ता है लेकिन वहां कुछ भी नहीं, तालाब पानी भी दिखाई पड़ता है वहां कुछ भी नहीं, वो गर्मी से सब जानते उसकी कैसा छाया पड़ती है। जो विज्ञान पढ़े मेरे सारे को समझ गए, दिखाई पड़ रहा लेकिन न कोई बगीचा न वहां पानी है। विज्ञान कहता जो आप आसमान देख रहे हैं, जो शून्य अवकाश जहां कुछ भी नहीं, उसका रंग ब्लू होता है। आप कह रहे हैं ब्लू लेकिन वास्तव में भय नहीं, वहां जाएंगे तो वहां वो भी नजर नहीं आता। जो विज्ञान पढ़े देखते हैं कि जब आप चांद पर पहुंचे तो आपकी जमीन भी चांद जैसी दिखाई पड़ती, और यहां से चांद भी चांद देखते ही रहते हैं। ये तो एक व्यवस्था है कि कभी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन एक व्यवस्था है, वो वैज्ञानिक है, वो आप जानते हैं, उसका अस्तित्व है, लेकिन एक व्यवस्था है कि कभी अमावस हुआ, कभी पूनम हुई, कभी ये हुआ, वो व्यवस्था है, बाकी घटता बढ़ता नहीं। तो वाद विवाद का ऋषि मुनियों ने कहा कि पूरे जगत से आप दूर नहीं कर सकते, हमारे किसने भी कहा है कि हे अर्जुन, तू अगर समझ ले, तू माया से अपने आप को दूर कर सकता है, बाकी पूरे जगत में से तू माया को नहीं हटा सकता, क्योंकि इसके बिना व्यवहार ही नहीं चलता। आप कहीं संगीत की सभा में बैठे हैं, आपको संगीत का ज्ञान भी है, आप सभा में से उठ जाइए तो बात और है, या जो संगीतकार है उसको मना लीजिए कि भाई चुप हो जाओ। अब देखो माया की बात बताऊं, आप उठ भी नहीं रहे, संगीतकार को पकड़ भी नहीं रहे, और सोचते हैं कि ये गीत गाना बंद कर दे, आपके सोचने से क्या होगा? आप उठ करके जा भी नहीं रहे, संगीतकार के पास बैठकर प्रार्थना भी नहीं कर रहे, उसका हाथ भी नहीं पकड़ रहे, उसका साथ भी नहीं पकड़ रहे, आप केवल आवाज दे रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि बंद करो बंद करो, आप जगत में से निकल भी नहीं रहे और भगवान के पास भी नहीं बैठ रहे हैं, और सोचते हैं कि माया खत्म हो जाए। माया तो दो चार और खत्म हो गई, या तो ज्ञान से जगत से ऊपर चले जाओ वो भी आप, या जो जगतपति है उसके पास बैठ जाओ। यहां पर सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बड़ी एक सुंदर बात आपको बताता हूं। अभी सूर्य दक्षिणायन, अगर इस तरह देखिए तो सूरज पूरब से काफी दक्षिण की तरफ आ गया। और एक व्यवस्था है कि ठंडी पड़ रही। अब यही बात मैं ऋषियों के बता रहा हूं, इस समय के बाद आप कहते हैं कि सूरज पूरब में निकलता है, लेकिन इस समय व्यवस्था देखिए तो पूरे पूरब में नहीं है, दक्षिण के तरफ। लेकिन उपनिषदों में जो कहा गया अब वो बता दो। तुम कहते हो कि सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है, लेकिन सूरज जब निकलता है तब पूरब बनता है। इसलिए जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान होगा वो जानते हैं कि दक्षिणायन उत्तरायण में कितने अंश का किस तरह होता है, कैसे होता है। तो मैं वास्तविकता जो सूरज है उसकी बात कर रहा हूं, दिशा की बात नहीं कर रहा हूं। सूरज न ठंडा है न गर्म है, सूरज सूरज है। सूरज के पास तो आज तक कोई पहुंचे नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था है पृथ्वी की कि कभी ये पृथ्वी पर गर्मी लगती है, कभी ठंडी, कभी बरसात, एक व्यवस्था। आइए पुरानी बात सुनाएं तो आया है कि कई लोग चांद पर पहुंचे और कुछ ऋषियों ने तब के बल पर मंगल तक पहुंचे। हमारी पुरानी कथा, कुछ ऋषियों ने सूरज को नीचे लाया, सूरज से रोटी पकाई, सब कुछ किया, लेकिन सूरज के पास नहीं पहुंच पाए, भस्म हो गए, जल गए। आज विज्ञान भी मानता है कि बड़ा मुश्किल है, मंगल पर जाने की तैयारी हो रही, लेकिन सूरज के बाद हमारी कहानियों में सूरज पर जाकर खाक हो गए, कोई भी महीना। लेकिन एक व्यवस्था है, सूरज जो वास्तविक सूरज है उसमें ठंडी गर्मी नहीं है, तो एक व्यवस्था है। आपने अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि में प्रकाश है, लेकिन चारों तरफ आपने कपड़ा लगा दिया तो प्रकाश मध्यम हो गया, बाकी अग्नि मध्यम नहीं है, तो व्यवस्था। इसलिए जो वास्तविकता है उसे आप समझें। राजा जनक की बात आती है, राजा जनक ने भी सपना देखा, राज का चौपट खोना, भीख मांगना, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जाग गए, सोचे ये सब क्या है। विद्वानों से पूछा, इतना ही कहते यह सत्य है कि वह सत्य है। फिर अष्टावक्र आए, फिर राजन व्यवहार में, आज कोई राजा है तो कल भिखारी भी बन सकता है, जो भिखारी राजा ये व्यवहारिक बात है, लेकिन वास्तविकता में आप आज आप पुत्र हैं, कल पिता बनेंगे, आप तो वही है, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, चीफ सेक्रेटरी बने, धारा सब बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन आप तो वही के वही है। आज जो प्रधानमंत्री कल नहीं भी रह सकता। आज एक गरीब आदमी है, इलेक्शन लड़ करके मंत्री भी बन सकता है, मंत्री गलती करे तो भिखारी भी बन सकता है, कर्म कर, लेकिन है तो आप वही के वही। आप जेल में जेलर, जेल के मालिक हैं, लेकिन कानूनी कोई गलती हो जाए तो जेलर अपराधी भी बन सकता है। अपराधी जेलर नहीं बन सकता, लेकिन जेलर अपराधी बन सकता है, बाकी अपराधी जेलर नहीं बन सकता, जेलर अपराधी बन सकता है, व्यवस्था। लेकिन है तो आप वही, आप जेलर थे, तभी जेल में थे लेकिन स्वतंत्र थे, मालिक। लेकिन जब अपराधी बन गए जेल वही है, अंदर ही रहेंगे, लेकिन आपको कानून के पालन में आप जेल के बाहर नहीं जा सकते। और जब जेलर हैं तो अभी ये सब माया है। आप जब अपनी वास्तविकता को समझ लेंगे तो माया दुख नहीं देगी। इस माया का एक प्रसंग बड़ा कठोर है, तो मैं आपको बताऊं। केवल समझ लीजिए, कुछ छोड़ना नहीं। पुत्र भी चाहिए, पुत्री भी चाहिए, सब व्यवहार चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन एक वास्तविकता को समझ लीजिए। जब समझ लेंगे तो कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख नाम की कोई चीज ही नहीं। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं। शंकराचार्य जी बौद्धों से बात विवाद करते थे, और शर्त क्या लगती थी, जो हारेगा आज में जलेगा। अब मैं एक मनोवैज्ञानिक बात बताता हूं, मैं शंकराचार्य जी के चरणों प्रणाम करता हूं। लेकिन जहां विचार कीजिए, बुद्धो हम, शुद्धो हम, मुक्तो हम, जो जबरदस्त वेदांति है, मैं बुद्ध हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, सब मैं वही हूं, मैं ही हूं। बड़े प्यार से कहा, एक वास्तविकता में रहने वाला वाद विवाद में हारने पर आग में जलने की बात क्यों की, कितनी अज्ञान की बात। लेकिन वहां पर माया के प्रसंग में आया, एक जगत की व्यवस्था माया के हाथ में, और वही माया वाली बात रामायण में भी है, महाभारत में भी है, आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ। इस माया को जब समझ लें तो व्यवहार करो, लेकिन कुछ भी हो जाए तो दुख और सुख दोनों से परे हो जाओगे। सुख की खोज में ही वेदांत देखिए, सुख की खोज में ही आप दुख उठा रहे हैं, सुख की खोज में ही दुख उठा रहे हैं, लेकिन सुख में स्थिति हो जाए तो दुख उठाने की कोई जरूरत ही नहीं। आप सुख की खोज में ही दुख की इमारत तैयार कर रहे हैं। इसको समझा दूं, थोड़ा कठोर सत्य है, लोकाश में कहानी समझाऊंगा। पहले मुझे माँ की गोद बड़ी प्यारी लगी, फिर पाठशालाएं अच्छी लगी, फिर मुझे फर्स्ट क्लास आना चाहिए, फिर धीरे धीरे हुआ, मतलब ऐसे ऐसे करते करते आज मैंने बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत बड़ा पद हो गया, शून्य में से इतना बड़ा सृजन आपने हमने किया। अम्माया, मैं 50 लाख की कोठी बनाया और बेच दिया 1 करोड़ में। थोड़ा कठोर सत्य कह रहा हूं कि माया क्या है। मैंने 50 लाख की कोठी बनाकर 1 करोड़ में बेच दिया, अब दूसरे दिन धरती कंप आया, नष्ट नाबूद कोठी हो गई। मैं मंदिर में गया कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, अगर बेचने में एक दिन लेट हो जाता तो मेरा 50 लाख का नुकसान होता, और जो खरीदा था, और जाकर भगवान कहता है, प्रभु एक दिन भी नहीं रहने दिया और मेरी 50 1 करोड़ की कोठी अब एक ही समय दोनों बातें हो रही, एक सुख और एक दुख, यही माया। आप लोगों की बात बताए, 8-7 साल हो गया पुत्र नहीं, कहे भगवान गुरु महाराज ने बताया कि भाई माया के बिना चलना मुश्किल है, तो पुत्र दिया। अब पुत्र दिया, महाराज जी पढ़ता नहीं तो उसकी जगह मैं पढ़ने जाऊं, एक बात खैर समझाता हूं, एक बात महाराज जब कभी बात होगी, महाराज ये आपकी कृपा से हुआ है, कहना नहीं मानता। तो मैंने कहा मैंने पुत्र दिया, मैंने कब कहा था तेरा कहना मानेगा, मैंने कब कहा था तेरा कहना, तूने पुत्र मांगा पुत्र दिया, वक्त कब कहा था तेरा कहना मानेगा, तो एक बार कितनी माने। तो वाद विवाद की बात आज ने अनाज काल से चली आई है। आज हिंदुओं की बात करें उसमें वाद विवाद है, मुस्लिम बात करें उसमें भी वाद विवाद है, ईसाइयों की बात करूं उसमें भी वाद विवाद है, बौद्धों में भी है, सब जगह है। ये माया ऐसी है कि बस पूछिए मत। और हमारे किसने जो कहा है कि हे अर्जुन, वास्तविकता के साथ ही इस माया का भी जन्म है, इसलिए तू वास्तविकता को पकड़। मान लीजिए मैं तबला बजा रहा हूं, लेकिन वास्तविक तो मैं हूं, तबला अपने आप थोड़े बज रहा, तबला नहीं ठीक रहा तो मुझसे कहिए, मेरा हाथ पकड़िए। आप तबले को गाली देने से क्या तबला बंद हो जाएगा, तबला तोड़ने से क्या दूसरा तबला नहीं आएगा। इस जगत को बार बार आप बदल रहे हैं, कहीं गाली दे रहे हैं, कहीं बदल रहे हैं, कहीं ये है। अगर आपको तैरना आता है तो सभी जगह आता है, बदलने थोड़े तैरना आएगा, आगे चलो वहां शांति मिलेगी, वहां शांति मिलेगी। शांति का संबंध आपके अपने जीवन से है। हाँ, प्रमोशन के लिए प्रगति के लिए जगह बदलिए, बाकी जगह बदलने से शांति मिलेगी मैं मानने के लिए तैयार नहीं। मैं अंगार से शुक्ल तीर्थ गया और तैरना सीख गया, ये कोई तर्क नहीं है। ठीक है शुक्ल तीर्थ जाना, लेकिन तैरना जानता हूं तो अंगारेश्वर भी तैर सकता हूं और शुक्ल तीर्थ। अगर मेरे मन में शांति है तो सभी जगह चलो मैं तुम्हें वहां ले चलूं, वहां ले चलूं, ठीक है क्षणिक शांति होगी। आप पढ़िए, जब आप वास्तविकता में निवास करेंगे, वेद का मंत्र है आत्मसर्व हृदय, उसकी बात जगह, जब आप अपने में निवास करेंगे, वास्तविकता में निवास करेंगे, तो आपके सिवा जगत में कोई और है ही नहीं। न किसी की पूजा करनी है, न किसी का पाठ करना, जीवन अपना अच्छी तरह दिखाना है। ये सूरज चांद भी आपकी सेवा में, बहुत ऊंचा वेदांत है, मामूली बात नहीं है। ये हवा आपके लिए चल रही है, ये सूरज आपके लिए है, पानी आपके लिए है, आप मतलब आप सबके लिए। लेकिन जब हम कमजोर हो जाते हैं तो इनके दास हो जाते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा आप सूरज की पूजा करें, अग्नि की पूजा करें, उससे आपकी शक्ति बढ़ती है। प्राइमरी क्लास में हमारे मास्टर हाथ पकड़ के लिखाते थे तो धीरे धीरे हम मास्टर बने। ये पूजा पद्धति हमें आगे बढ़ाती है। जैसे शुरू में हम आपको माला देते हैं भाई मंत्र का जाप कर, लेकिन माला हाथ में रखने की बात नहीं है, माला हाथ में रख करके भगवान का नाम अपने विचार अच्छे रखो, या हाथ में माला आते ही अच्छा विचार हो गया, ये गारंटी नहीं है। गेरुआ बस पहनते ही हमें सिद्धि मिल गई, गारंटी नहीं है। मंदिर में बैठने से हमें शांति मिल गई, ये बात नहीं है। लेकिन मंदिर में जाके शांति मिल सके कोशिश करें। गेरुआ वस्त्र पहन करके हम साधना से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माया कहती है, हे बकरा, तू शेर की खाल पहनकर शेर जैसा लग सकता है, लेकिन हलन चलन नहीं हो सकता। ये कपड़ा पहनने से, मंदिर में जाने से हमें अपना विचार हलन चलन बदलना है। कपड़ा बदलने की कोई जरूरत, जगह बदलने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप बदलिए, आगे बढ़िए, 4 से 10 मकान बनाइए, जमीन खरीदिए, आगे खूब बढ़िए, तो स्वभाव है। लेकिन ये बदलने से शांति मिलेगी, बदलने से हमें डरना आ जाएगा, हमें विद्या आ जाएगी, इसकी बात नहीं। हम लोग इतने बड़े बड़े आश्रम क्यों बना? आप लोगों को शिक्षण मिले, ट्रेनिंग मिले, आप मकान बनाते हैं, हम आश्रम भाई तो वो भी है, ये भी है। लेकिन वास्तविकता ये समझिए कि जो अच्छे साधु हैं वो आश्रम का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आजकल हो रहा, वो फिर आश्रम दुरुपयोग होता तो खंडहर बन जाएगा। मंदिर जब खंडहर बन जाता है, कोई नहीं रहता, कौन पूजा करता है? अगर आप पुराण पढ़ें, इतनी सुंदर भाषा है वाद विवाद टालने के लिए, लेकिन फिर भी हो रहा, वो माया की बात। जिस मस्जिद में झगड़े हो वहां नमाज कबूल नहीं होती, कितनी ऊंची बात है। तो क्या है, मस्जिद की बात है, मंदिर की बात है, बात हमारी है। लेकिन आज मंदिर के झगड़े कितने हो रहे हैं, हमारी बात हमारे मुस्लिम भाइयों ने ली। घर मंदिर बनना चाहिए, पवित्रता शुद्धता होनी चाहिए, लेकिन मंदिर घर नहीं बनना चाहिए। मतलब घर का मतलब लड़ाई झगड़ा झगड़ा। लेकिन मंदिरों के पीछे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो काय के मंदिर? इस वास्तविकता को समझिए। आप मंदिर के, आप मेरे पास कब आते, इस सबसे ऊपर जाने के लिए आपको कुछ समाधान हो, और आप आए और किसी ने मुझे गाली दी और मैंने कहा कि उसको थप्पड़ मारो, ये गुरु का धर्म नहीं है। फिर बात विवाद बढ़ता जाए, हमारा अहम जागा, मैं इतना बड़ा गुरु, मुझे क्यों गाली दिया? इसलिए एक बड़ी कड़वी बात आपको सुनाऊं, बहुत कड़वी। पहले वो बात सुना दूं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने सब कुछ कहा है, लेकिन हम लोग शायद अपने को बचाने के लिए बोल नहीं पाते। विश्वामित्र और वशिष्ठ में वाद विवाद हुआ, और इसका जरा राहत समझिए, फिर आप समझ जाएंगे। बात अच्छी है, लेकिन वाद विवाद का जो विचार है वो आप होता। वशिष्ठ कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, ये तो कहानियों में है, मैं तो थोड़ा और आगे बताऊंगा। विश्वामित्र कहते हैं राम बड़े, बात बड़ी अच्छी है, लेकिन देखिए बात विवाद किस तरह से हम फंसते हैं, किस तरह से माया काम करती है। कहानी तो आप पढ़ ली है, लेकिन माया किस तरह से काम करती है वो आप नहीं समझने की कोशिश करते। वशिष्ठ जी ने कहा, राम से बड़े राम का नाम। विश्वामित्र कहते नहीं, राम ही बड़े। हुआ बात विवाद, इसका फैसला कैसे किया जाए? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं इसका रास्ता निकालता हूँ, अच्छे लोगों में भी वाद विवाद किस तरह होता मैं समझाऊंगा, बात बड़ी अच्छी। हनुमान जी को बुलाया, आप लोग कहते थे बकरी का बला कहीं होम होना है तो किस तरह से, हनुमान जी को बुलाया, कहते हनुमान जी मैं कुल गुरु हूं, या समझते जाइए बाद में बहुत अच्छा बताऊंगा, मैं कुल गुरु हूं, मेरी आज्ञा का पालन दशरथ भी करते राम भी करते कोई उल्लंघन नहीं करता। कहा फरमाइए गुरुदेव। कहा कल भरी सभा में सबको प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र को नहीं जाना। हुआ ऐसा, कहानी है सब जानते हैं, मैं इसकी गहराई को बताना बात विवाद की जो बात करी इंद्रवदन ने कहा सबको प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र को नहीं करना। दूसरे दिन जैसा वशिष्ठ जी कहे थे वैसा हुआ, विश्वामित्र को क्रोध आया, राम के पास आए, वहां का जैसे तुम्हारा प्यारा मूर्ख चेला बोला है, तुम्हारा प्यारा मूर्ख चेला, अरे गुरु जी मूर्ख क्यों, तो बड़ा बुद्धिमान है, अरे आज भरी सभा में हनुमान जी को बुद्धिमान माना जाता है, बहुत बुद्धिमान, मूर्ख बोल दिया क्रोध में। और कई बार कहा क्रोध में आदमी अच्छा सब नहीं बोलता, हमेशा हल्का बोलता और नुकसान ही कर, ये नियम है। आपका प्यारा बोला लेकिन मूर्ख बोल दे, क्या बात हुई गुरुदेव, आज भरी सभा में उसने सबको प्रणाम किया मुझे नहीं किया। अरे गुरुदेव आपका अपमान हुआ, मेरे गुरु का अपमान हुआ, दस गुरु का अपमान किया, क्या करें, उसका सिर धड़धड़ कर दो। किसी ने हनुमान जी के पास जाके कहा, दौड़े दौड़े वशिष्ठ के पास है, अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आप ऐसी चाल चले कि मेरा सिर ही धड़धड़ हो जाए, क्या बिगाड़ा, कहा कुछ नहीं, जाओ सर जो किनारे स्नान करके फटक किला पर बैठ कर श्री राम बोलो। राम पूछते हैं कहाँ गया मेरे गुरु का अपमान करने वाला हनुमान, वो भी थोड़े गुरु का अपमान सुन करके चलित हो गए, आए कहते मेरे गुरु का अपमान करके मेरा नाम लेता श्री राम बोलता वाहन चलाने लगे, तो गुरु ने कहा से अलग करो द्वान सब टूट रहा है टूट रहा है। विश्वामित्र को लेकर वशिष्ठ जी आए, कहते देखो हनुमान राम का ही नाम ले रहा है, राम बाण चला रहा है और टूट रहा है, अब बताओ राम का नाम बढ़ाए कि राम बढ़े। विश्वामित्र कहते हैं छोटी सी बात के लिए कितना वाद विवाद हो गया, कितना पतंग हो गया, ए माया वहां पर कबूल किए है कि माया किसी को नहीं छोड़ती, कहीं मान दिलाने में दूसरे का अपमान करने में ये भी माया है, अपने मान के लिए दूसरे का अपमान करना ये माया नहीं तोड़ क्या है। एक माया की बात सुना दूं, कैसे लोगों में मान कर इसे शास्त्र क्या कहता है, आप पैसे का त्याग कर सकते हैं लेकिन मान का त्याग करना बहुत ही मुश्किल। एक कहानी है, मैंने 1000 यज्ञ किया, मैं जहां चाहूंगा वहां स्वर्ग में रहूंगा। चित्रगुप्त कहते हैं मैं जा पूछा हूं भगवान से, ये तो कहानी है। भगवान कहते हैं हाँ भाई हमारा नियम है कि वो 1000 यज्ञ करेगा वो जहां चाहेगा रहेगा। चित्रगुप्त आते हैं हाँ भाई भगवान ने कह दिया तुम जहां भी रहना चाहो रहो 1000 यज्ञ किया। कहते कल्पतरु किधर है, कहा इधर है, गए वापस आ गए। कहानी कहे आप वापस क्यों आए? कल्पतरु में कहा कल्पतरु के पास जाकर न वहां बैठने की जगह है, बैठने की तो बात छोड़ो, वो पेड़ में भी कहीं जगह नहीं, लोग नाम लिख लिख के मर के चले गए, कहीं जगह ही नहीं। तो मैं बैठने की जगह नहीं मिली तो सोचा कल्पतरु पे नाम लिख दूं। आपके पहले भी लोग इस तरह आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैंने भगवान से पूछा, भगवान कहते उसको खुद भेजो जहां जगह हो जा करके नाम लिखे कि बैठे। तो कहा उन लोगों ने क्या किया? कहा आपकी तरह वो भी लौट कर आए। तो भगवान कहते हैं, मुझे कहा कि जब कोई लौट कर आए तो कह देना जो आदमी नहीं पसंद है उसको उठा के बैठ जाओ, या जो नाम नहीं पसंद है उसको निकाल के वहां नाम ले लो। ये माया, जब नहीं बैठने की जगह मिलेगी तो किसी को हम, नहीं जगह मिलेगी तो किसी के नाम पर चौकड़ी। ए माया, आप अपनी जगह, आप कल तो आप दूसरे के नाम पर क्यों नाम लिखते, अपना नाम क्यों नहीं लिखते? आते लोग मेरे पास, स्वामी जी कुछ हो जाए जितना पैसा खर्च करना करूंगा, लेकिन ये जमीन इसको नहीं दूंगा। तो मैंने कहा इतने पैसे में तो दूसरी जमीन खरीद सकता है, काहे को लगता है इतने पैसे में दूसरी जमीन खरीद सकता है, उसके लिए तैयार नहीं, लेकिन लड़ करके लड़ने के लिए तैयार। ये माया नहीं तो और क्या? एक बात कहता तो इंद्रवदन, ये माया पहले से है और रहेगी, अब हम आप बच जाएंगे। सब तो नहीं बच सकते, लेकिन हम आप माया को समझ लें। कुछ भी हो पहले हमें सुनना है, फिर तपास करना। गुरु ने हनुमान जी को कहा, एक कल्पना है, आप में इतनी शक्ति है, लेकिन अगर आप सांस उठा के देखें तो यहां थोड़ा सा अहम आया। अपने अहम का किसी तरह सिद्ध करने में हनुमान को उपयोग किया गया, इसलिए ऋषियों ने कह दिया है कि जब आपके हाथ में तलवार आती है तो लकड़ी जो मूठ है लकड़ी की होती है, केवल तलवार आए तो काम नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें दुनिया लकड़ी की तरह मूठ बना के अपना काम लेती है, इसलिए किसी खतरनाक आदमी की लकड़ी की तरह मूठ बनने की जरूरत नहीं बनने की जरूरत। हमारा अपना जीवन, ये बड़ी ऊंची बात कह रहा मैं हनुमान जी को मानता, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान सच को समझने की तलाश करता है, कोशिश करता है। मैं कभी किसी खंडन नहीं करता, खंडन कैसे करूं? खंडन मेरा हो आपका नहीं हो। अगर मैं आपको हल्का मानूं तो हम रोज बोलते हैं हम सब परमात्मा की संतान है, आपको अगर हल्का बोलूंगा तो सबसे बड़ा अपमान मैं परमात्मा का कर रहा हूं। ये समझ चुका हूं। कितने लोग मुझे कहते हैं मनीषानंद जी ऐसा, मैंने कहा कुछ है, मैं समझ चुका, इस माया के बिना ये जगत नहीं चलेगा, लेकिन हम उससे बचे आप खत्म नहीं कर सकते। जो चीज है, आपका विज्ञान भी कहता जो है आप उसके आगे जा सकते, खत्म नहीं। ये नदी आप नहीं खत्म कर सकते, नावड़ी से पार कर आगे निकल जाए नदी पीछे हो जाएगी, नदी को पीछे करो, नदी खत्म करने की कोशिश न करो, माया को पीछे करो। और जब आप अपनी पीठ नहीं देख सकते तो माया को देखने के लिए यू टर्न न लो। आप अपनी पीठ नहीं दे सकते तो माया पीछे रखो। ये रुपया पैसा कोठी, पहले इंसानियत, अपनी मानवता का त्याग रुपए पैसे मान के प्राप्ति में मत करो। नहीं कहीं भी नहीं, कहीं के भी नहीं रहो, बताया ना, ये जो वशिष्ठ जी का उदाहरण दिया, इतने बड़े ज्ञानी होकर के बाद अंत में यही कहते हैं सब क्या बेकार हुआ, छोटे अहम छोटा सा आया। इसलिए वेदांत ये कहता, बताऊं वेदांत क्या कहता, कि वाद विवाद कैसे हुआ अहम के कारण। तीनों देवता बैठे हुए हैं और अक्सर बातचीत होती है। विष्णु कहते हैं भाई हम तीनों हैं, ये ब्रह्मा है, मैं विष्णु तुम शंकर हो, लेकिन तीनों में बड़ा हो। शंकर ने विचार कर ज्योतिर्लिंग शुरू किया जो आपका ये है ज्योतिर्लिंग। ब्रह्मा से कहा कि ऊपर जाओ, विष्णु से कहा नीचे जाओ, पता लगा के विष्णु आ गए, कहा बैठो। ब्रह्मा कुछ देर के बाद आए, कहानी का मर्म रह समझिया। ब्रह्मा कहते मैंने पता लगा लिया, कहा चल ब्रह्मा तू बर। फिर ब्रह्मा कहते देखो केतकी का फूल लाया हूं, ये हता होता। शंकर कहते जब मैंने मान गया तो प्रमाण किया जरूर, यहां बड़ी जबरदस्त बात, बिना जरूरत जो प्रमाण दिखाए तो उसे सावधान, प्रमाण तो कहीं भी खरीद नहीं। बिना जानकारी बिना जरूरत के जो कोई प्रमाण दिखाए उसे सावधान रहना। शंकर कहते हैं अब तुम्हारा प्रमाण नहीं, मैं अपने से देखूंगा, देखा सब लीला समझे। और वही माया का चक्कर, झूठ बोला, मेरे से झूठ बोला, मैं तो मान गया था। हे ब्रह्मा तू सृष्टि की रचना करता है लेकिन तेरी पूजा नहीं होगी, माया नहीं तोड़ गया, क्रोध की माया। लेकिन सिद्ध विष्णु कहने लगे नहीं नहीं अपना साथी है ये है, कहो जाओ मेरी पूजा करेगा फिर होगा। लेकिन विष्णु तुमने हार स्वीकार किया, आज के बाद से हरि हर। मैं बड़े प्यार से कहता पहले लोग तुम्हारा नाम लेंगे और फिर मेरा लेंगे। अब इस पर मनोविज्ञान आया समझने के लिए, हमारी आपकी बातचीत हो रही है, वाद विवाद हुआ कि राम बढ़े कि राम का नाम बढ़े। अब विज्ञान कहता है भाई राम बढ़े, तुम राम का नाम बड़ा मानते हो स्वीकार करो, कह दो राम बढ़े, झगड़ा करने की क्या, तुम मैं छोड़ा। ये हरिहर से ये विवाद खत्म करने की कोशिश। अगर कोई आपसे कहे चलो मैं अपनी बात करूं कि मनीषानंद आप बड़े कि मैं कहता भाई आप बड़े ना, अपने को क्या मारो बोले, क्योंकि ऋषि मुनियों ने कह दिया समझिए कागले और गरुण की लड़ाई हुई, एक कल्पना ही है, कागले और गरुण की लड़ाई हुई और कागला अहंकार में आया, वो कहता देखो मैं कितने ऊंचे बैठा हूं, तू तो नीचे बैठा है, तू छोटा मैं बड़ा। फिर दोनों मिल करके गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा कहते कागला तू कितने ऊंचे जा, सोने के पिंजरे में रहे कागला ही रहेगा, ये कहीं बैठे गरुण रहेगा, गरुण तू इस कागले के विवाद में क्या पड़ता, तू अपने अपनी स्वयं की इज्जत कर। अब यही बात कहता है कहानी का, आप अपनी स्वयं इज्जत करें, किसी को ऊंचे नीचे बैठने से किसी की इज्जत जाने वाली नहीं। आप चक्कर में पड़ गए, तो कागला बहुत ऊंचे बैठता है पेड़ पर तो गरुण बन जाएगा। एक बात तो ये हमारे आपके बाद विवाद सुलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी बताया ना, हम ज्ञानी भी टकरा जाते हैं, भगत भी टकरा जाते हैं। अब कितनी कहानियां ऐसी हैं कि बेकार की, लेकिन अपना बेकार की कहानियां, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने उसकी खोज किया, ज्ञानी बड़ा कि भगत बड़ा। आप गीता पढ़िए, गीता में कर्मयोग है, भक्ति योग, ज्ञान योग है, भगवान बताए ये रास्ता सरल है, ये थोड़ा सा कठिन है। अब हमने क्या लगा लिया कि जो बलवान है वो कठिन रास्ते चलता है, जो कमजोर सरल रास्ते चलता है, इसलिए ज्ञान बड़ा हो गया और भक्ति छोटी हो गई। भाई एक बात करता, क्या आप अर्थ लगा रहे? हम आपको सलमान बता रहे। मैंने एक बच्चे को देखा मनोवैज्ञानिक, मैंने कहा तू संगीत में जा। उसके परिवार दूसरा है, मैंने कहा तू केमिस्ट्री पढ़। तो लोग क्या कहते हैं, ये ज्यादा बुद्धिमान है गुरु जानते, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आए, कहा थोड़ा आधा कचरा इसलिए संगीत का। अरे भाई सबकी रुचि अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होता है, वो छोटे, लेकिन हम पता नहीं क्या है, क्या हाथ लगा लेते, हम तो अधी लगा लेते। इसलिए इस वजन ये बात विवाद माया का देवताओं में भी रहा है। देवताओं की बात सुनाऊं माया की, हाथ जोड़ के कहता हूं, कहीं पर भी देवता और राक्षस एक साथ नहीं बैठे हैं। माया की बात, कहीं भी देवता और राक्षस एक साथ नहीं बैठे हैं, लेकिन समुद्र में से लक्ष्मी माया निकालने के लिए दोनों साथ हो गए हैं, बाकी कहीं साथ माया निकालने के लिए दोनों साथ हो गए। अब क्या आप, मैं बताऊं माया के बाद, दान के लिए भी माया चाहिए, दूसरे को उठाने के लिए भी माया चाहिए, और गिराने के लिए भी माया चाहिए। एक बात कहता, इसलिए भगवान ने कहा मम माया जो हे अर्जुन, कुछ भी तू करेगा लेकिन माया के बिना जगत नहीं चलेगा, तू माया से बच और अपने धर्म का पालन कर। इसलिए माया देख करके सन्यासी नहीं बनना। पत्नी मर गई, आप सन्यासी बन गए, घर में खाने ठिकाना नहीं, सन्यासी बन गए, किसी ने अपमान किया, सन्यास नहीं, समझ कर सन्यासी बन, समझ के करो, आगे बढ़ो, दुखी होके नहीं, आनंद। इसलिए मैं भगवान कृष्ण के बात को कहता हूँ, ये माया देवताओं में भी लड़ाई लड़ाई है, राक्षसों में भी लड़ाई है, हिंदुओं को भी लड़ा रही है, मुसलमानों को लड़ा रही है, हिंदू मुसलमानों को भी लड़ा रही है, ईसाइयों को लड़ा रही है, सब करके। अब प्रभु इतना ही कहूँगा, भगवान ने कहा मेरी माया को समझना आज तुम कठिन है, तू बच जा, ये माया दुनिया से खत्म होने वाले नहीं है, लेकिन हम आप माया से बच जाए। माया क्या है वही बता दो। आज का दिन कितना अच्छा है, अच्छा काम करो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, हम कोई गलत काम न करें, किसी गलत सोचे नहीं, तो एक एक दिन संभाल के चलो, बाकी माया तो अपना काम करती रहेगी, चलती रहेगी। इसलिए वाद विवाद से बचो, वाद विवाद के कारण हमारी सिद्धि भी अहंकार ला सकते हो, हमारा धन भी अहंकार ला सकता है, हमारी विद्वता भी अहंकार ला सकते है, हमारी शक्ति, शरीर की शक्ति भी ला सकते है, पहलवान लगते हैं ये है। तो ये सब चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन वाद विवाद को मैं नहीं मिटा सकता, कारण ये तो पहले चला आया है और चलता रहे, लेकिन आप लोग मन को वास्तविकता में अपने अंदर मन को रखिए और इस माया को समझने की कोशिश कीजिए, और माया जब समझ लेंगे तो माया आपके साथ रहेगी, आपकी मदद करेगी, लेकिन माया के कारण हम किसी को परेशान और दुखी नहीं करेंगे। अर्थात आपका मकान, आपका कोठी, आपका पैसा, आपकी कार, आपका बंगला, आपकी वाणी, आपका जीवन, कोशिश करो कि जो कुछ मेरे पास है वह किसी भी तरह किसी को दुख न दे। इसलिए रामायण में आया है, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत सो करत बलाई। जब पूछा है कि जो लोग माया से दूर हैं उनका क्या है, जो लोग माया से दूर हैं वो स्वप्ने में भी किसी भी तरह अपनी शक्ति से किसी को दुखी करना, बस सबसे बड़ी बात, सब कुछ करो, मकान बनाओ, ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन करो, लेकिन एक माया की बात बताऊं, एक बार मैं कहीं गया तो चलते समय उन्होंने कहा कि गुरु जी दोपहर में आएंगे, ये बनाना ये बनाना वो बनाना। तो मैं पहली बार गया था, जब दोपहर में आया तो दो तीन जो उन्होंने 10-12 चीज का नाम लिया था। तो मैंने कहा चेला राम आपने 10-12 चीज देते आए तो पड़ोसी को जलाने के लिए। पड़ोसी पता चले गुरु के लिए इतनी चीज बनाए तो गुरु के साथ भी ब्लैक क्योंकि कभी पड़ोसी पूछ बैठे उसके रात में क्या
खाया
तो मेरी क्या हालत होगी। आज मैं मिला जब उसको थोड़ा क्या माया मतलब कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसा। तो इसी तरह से कहूँगा कि भाई हम आप बचे बाकी माया खत्म नहीं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हम आप माया से, माया जो कुछ भी है शक्ति है धन है, माया से हम सुख दें दूसरे के लिए। उसके लिए बड़ी सुंदर बात की गई, ये पत्थर है, एक पत्थर है देखिए ये पत्थर से मैं अपनी सीढ़ी बना कहीं टूटी है सीढ़ी बना सकता हूँ, इसका उपयोग हुआ। और रास्ते में धक करके कोई ठोकर खा के गिर भी सकता है, पत्थर में से मूर्ति भी बन सकते हैं, राम की भी और राक्षस की भी। एक बात करता हूँ इसलिए जो कुछ है मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो कुछ है उससे आप लोगों का भला करें और किसी का भला करें न करें लेकिन अपने परिवार का तो करें, अपने बच्चों का करें, अपना तो करें, नहीं तो करोड़पति क्या कर बताओ। बच्चे आ कहते स्वयं पिताजी नाराज हो गए, कहा क्या कहते मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरी प्रॉपर्टी तेरा हिस्सा नहीं बनेगा। कहा क्या बात है, मैं कहता हूँ मैं यहाँ शादी करूँगा, पिताजी कहते यहाँ करो, तो मैंने कहा ये भी तो माया है। पिताजी कहीं लड़के शादी करना चाहते हो लड़का, तो मैंने कहा भाई मनाता हूँ पिताजी को करता हूँ भाई क्या है? अब गुरु के नाते मान सम्मान होता है एक बात का, इसलिए माया का रंग तो ऐसा है कि आपको बताऊंगी एक माया की बात बड़ी अच्छी है। जिनको लेने की आदत है उसकी माया बताऊंगी। ये कल्पना मैं अपने ऊपर लेता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं लेकिन दूसरे के नाम करूं अपने ऊपर। मुझे मंत्री बनाया गया तो पैसा खाना शुरू किया, कहते स्वामी जी तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं और काम भी अच्छा करते हैं। तो फिर मुझे घोड़े और गधे का मंत्री बनाया गया, फिर भी पैसा लेना शुरू किया। तो सरकार ने पता लगाया कि भाई पहले तो ये स्टील का सीमेंट का था उसमें अभी कैसे खाता है, तो मैं क्या किया एक घोड़ा दुबला है तो उसको रात चना नहीं देता, एक गधा दुबला हो गया घास नहीं देता तो थोड़ी बहुत तो कमजोरी होती है, तो शायद क्या करे। कहा देख अभी कितना चना महीने का तू गड़बड़ करता है, कहा 1 किलो, तो अभी 3 किलो करना, 2 किलो का पैसा रोज मुझे दे देते। एक गधे को कितनी घास खिलाता है, कहा 4 किलो, तो अभी 1 किलो खिलाना बाकी का पैसा। सरकार को पता चला कि तो घोड़े गधे से भी कमा रहा है माया। फिर सरकार ने कहा कि भाई शुक्ल तीर्थ में नर्मदा जी जाते हैं लोग, वहां कबीर बैठ जाते हैं, इनको कहो कि लहरें गिरे और इनको बाकायदा सब कुछ मिलेगा। मैं आया नावड़ी नहीं चलेगी, कहा क्यों, सरकार ने कहा है कि लहरें गिन के दो, हमें बराबर लहर गिन के देना है, आपकी नावड़ी आप लोग चलोगे तो कैसे गिनूंगा, तो शायद कुछ बता। तो 2 रुपया निकल 2 रुपया सरकार को मिला। तो सरकार ने यही कहा कि भाई ये माया इतनी प्रबल है जिसे देना है जहाँ होगा देगा और जिसको लेना है जहाँ भी होगा वहाँ से। तो भाई हम लोग देने लायक बनेंगे, बाकी जब लेने लायक बनेंगे तो गधे से भी कमा लेंगे, घोड़े से भी कमा लेंगे और पानी में से भी कमा लेंगे। इसलिए देने की बात करो, इसलिए माया जाने वाली नहीं है। तो वाद विवाद ये है, देने में कोई इतना वाद विवाद नहीं है, लेने में बहुत। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु ये वाद विवाद भले आपके दुनिया में बना रहे लेकिन मेरे सबसे से देने लायक बने, लोग लेके आपस में लड़े कैसे बताऊं। मैं तो दूल्हा नहीं बना लेकिन गया हूँ। जब आप दूल्हा बनते हैं, घोड़े बैठाए जाते हैं, तो लोग क्या ऐसे पैसा कर फेंकते हैं, तो पैसा गरीब लोग उठाते हैं, जो दूल्हे के साथ चलते वो नहीं उठाते। तो हे भगवान, मेरे शिष्य आपके साथ रहें और आप नौछावर करके जो फेंकूं वो गरीब लोग उठाएं, लेकिन मेरा चेला नौछावर करके किसी को उठाने लायक न बने, बस आप देने लायक बने। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब देने लायक बने, देने लायक बने, देने। तो आपका विवाद तो खत्म होगा, दूसरे खत्म होगी, लेने में ही गड़बड़ी है, लेने में ही सारा बात विवाद है, सारे झगड़े लेने के ही। तो भाई अब क्या करूं, इसको सर मैं सोचूं मैं चेले के लिए क्या करूं, चेला सोचे कि गुरु जी के लिए क्या करूं, बड़ा भाई सोचे कि छोटे भाई के लिए क्या करूं, छोटा सोचे कि बड़े के लिए क्या करूं, पति सोचे कि पत्नी के लिए क्या करूं, पत्नी सोचे पति के लिए। और गड़बड़ी तभी है कि बड़ा सोचता है कि छोटा मेरे लिए क्या कर रहा, छोटा सोचता है बड़ा क्या कर रहा, और गुरु सोचता है चेला तो मेरे लिए क्या कर रहा, चेला कहता तू मेरे लिए क्या कर रहा है। भाई बस आपको यही कहूँगा, पति कहता है तू मेरे लिए क्या करती, वो कहते तूने मेरे लिए क्या किया, सब जगह मेरे मेरे का झगड़ा, मेरे को मिटाइए और मेरा करके तेरा तेरा कीजिए। गुरु नानक कहते तेरा तेरा तेरा। तो आप सब लायक बन के तेरा तेरा करें, बात विवाद मिट जाएगा। ये प्रभु से प्रार्थना करते हुए आपने जो विषय दिया, जितना मन सका न्याय दिया, न्याय किया, अब आप लोग समझ रहे। हरि ओम
सदगुरु।
मैं वहां चलूंगा। अरे आप डॉक्टर साहब की ड्यूटी, एक हाथ आप पकड़ो, एक
नहीं दूसरे और डॉक्टर मैंने पकड़ के नहीं डाल लिया है, अब डॉक्टर साहब लेके जाए,
मैं बेईमान हो जाऊँ।
अभी आपने बोला है अच्छा वाले करते हैं, अब आपके थ्रू भी मिलेगा और डॉक्टर साहब भी लेंगे, दोनों लेंगे।
अरे आइए आइए, भोजन देख लीजिए, उसके बाद अपने
नहीं भाई कोई खबर नहीं है।